श्रोताओ नमस्कार। कार्यक्रम डॉक्टर लुका की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले सप्ताह के कार्यक्रम में हमने यकृत से संबंधित रोगों के विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त की और हमें विश्वास है कि इस जानकारी के द्वारा आपको काफी लाभ मिला होगा। आज हम जिस विषय पर बातचीत करेंगे वो है पीलिया, जो अशुद्ध भोजन एवं गंदे पानी के द्वारा फैलता है। आइए देखें डॉक्टर लुका पीलिया के विषय में क्या बताते हैं। आइए सुने डॉक्टर लुका की ये वार्ता।
प्रिय मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, सुभाष और उसका संपूर्ण परिवार, जिसमें पत्नी, पुत्र और पुत्री, चारों पिछले सप्ताह बीमार हो गए। चारों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द हो रहा था और उनके अनेक पड़ोसियों को भी यही शिकायत थी। वे स्थानीय अस्पताल गए और वहां उन्हें यह जानकारी मिली कि उनके गांव में पीलिया ए का प्रकोप है। मित्रों, सुभाष और उसकी पत्नी ने यह नाम पहले कभी नहीं सुना था। उन्हें बताया गया कि एक वायरस है जो पानी और भोजन में प्रवेश करके मनुष्य तक पहुंच जाता है। सुभाष और उसकी पत्नी कई सप्ताह बीमार रहे और बीमारी के कारण वह काम पर नहीं जा पाए। वे दोनों ही फैक्ट्री में काम करते थे। उनके बच्चे भी कई सप्ताह स्कूल नहीं गए। उन्हें बहुत थकान, हल्का बुखार और शरीर दर्द तथा आंखों में पीलापन था। मित्रों, सुभाष और उसकी पत्नी पीलिया ए के बारे में जानने को उत्सुक हुए। उनके ग्रामवासी और अन्य रोगी की जानना चाहते थे कि यह क्या है। कोई नहीं चाहता था कि सुभाष और उसकी पत्नी के समान बीमार होकर अपने काम से छुट्टी लें। पहले लक्षण से लेकर स्वस्थ होने तक उन्हें मित्रों 4 से 6 सप्ताह लगे। पहली बात, पीलिया ए क्यों होता है? जैसा पहले कह चुके हैं कि पीलिया ए भोजन और पानी में उपस्थित वायरस के कारण होता है। यह मनुष्य से मनुष्य को लगता है। यह वायरस पशुओं में नहीं होता है, इसलिए इसके रोगी को पहचानना आसान है। इसके विषय जानकारी प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि बहुत लोगों को मित्रों पीलिया होता है और रोगी बहुत बीमार हो जाता है। सौभाग्य की बात तो यह है कि रोगी अधिकतर मरते नहीं और सुभाष के समान बीमार हो जाने पर भी रोगवाहक अवस्था उत्पन्न नहीं होती है। मित्रों, इसलिए पीलिया ए का रोगी यकृत की बीमारी का शिकार नहीं होता है। दूसरा प्रश्न, पीलिया ए में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मित्रों, मैं आपको बता दूं, पीलिया ए में जो अंग प्रभावित होता है वो है यकृत। प्रत्येक लक्षण यकृत से ही संबंध रखता है, जैसे जी मचलना, उल्टी, दस्त, थकान, सिरदर्द, पीली आंखें इत्यादि। यकृत यदि एक बार संक्रमित हो जाए तो 4 से 6 सप्ताह के बाद ही वह सामान्य हो पाता है। यह एक शुभ समाचार है कि पीलिया ए के वायरस से यकृत सदा के लिए संक्रमित नहीं होता है। मित्रों, तीसरा प्रश्न है, सुभाष और उसकी पत्नी के समान मनुष्य पीलिया ए के वायरस से संक्रमित कैसे हो जाते हैं? संसार में सब जन, बूढ़े, जवान, स्त्री पुरुष और सभी देशवासी, कोई भी क्यों ना हो, पीलिया के वायरस से प्रभावित हो जाते हैं। मित्रों, भोजन और जल के द्वारा वे रोगग्रस्त हो जाते हैं। इससे एक और प्रश्न उत्पन्न होता है, यह वायरस भोजन और पानी में कहां से आता है? मित्रों, यह एक चक्र है। पीलिया का रोगी अपने मल मूत्र में वायरस त्यागता है। यदि मल मूत्र को उचित रूप से त्यागा ना जाए तो वह मनुष्यों में पहुंच जाता है, जैसे पेयजल में, और मनुष्य उस जल को पीता है जो पीलिया ए के वायरस से संक्रमित है। मित्रों, पीलिया ए एकमात्र रोग नहीं है जो हमें बीमार करता है। एक और रोग है, वह है आत्मिक रोग, जो पापों के कारण हमें हो जाता है। मित्रों, यह रोग पीलिया ए से भिन्न है। यह ना तो यकृत के असाध्य रोग के समान कोई रोग उत्पन्न करता है और ना ही मनुष्य को मार डालता है। मित्रों, अब आप सोच रहे होंगे पाप क्या है। मित्रों, मैं आपको बता दूं, पाप परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलना है, या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि परमेश्वर द्वारा स्थापित लक्ष्य से चूक जाना। अब आप पूछेंगे कि मनुष्य परमेश्वर द्वारा स्थापित लक्ष्य से कैसे चूक जाता है। मित्रों, सुभाष ने यही प्रश्न पूछा था। मैं आपको बता दूं, रोग अवस्था में बिस्तर पर लेटे लेटे सुभाष और उसकी पत्नी ने बाइबल उठाई और अपनी वर्तमान दुखद अवस्था में शांति पाने के लिए कुछ खोजना आरंभ किया। मित्रों, वर्षों पूर्व उनकी किसी मित्र ने उन्हें बाइबल दी थी। मित्रों, उन्हें बाइबल में अंततः शांतिदायक बात मिल ही गई। रोमियो 3:10-18, यह बात पौलुस ने सन 63 में रोम के मसीही जनों को लिखी थी, जहां पे इस प्रकार लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। मित्रों, ये मनुष्य का आकर्षक चित्रण नहीं है। इस महान अभिव्यक्ति से अनेक उत्तम बातें उत्पन्न होती हैं। पहली बात, किसी को अच्छे काम करना पसंद नहीं। दूसरी बात, यदि छोड़ दिए जाएं तो सब के सब भटकना चाहते हैं, वे परमेश्वर का भय नहीं मानते। सुभाष और उसकी पत्नी जानते थे कि परमेश्वर है, परंतु उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते थे। उनके विचार में परमेश्वर उनके जीवन के विषय में चिंता नहीं करता है। मित्रों, वे भारत में भ्रष्टाचार के लिए चिंतित थे। यद्यपि वे अपने देश और उसकी राष्ट्रीय धरोहर से लगाव रखते थे, उन्होंने परमेश्वर को जानने के विषय में विचार विमर्श किया। यदि रोमियो की पुस्तक द्वारा प्रस्तुत विषय परिस्थिति से निकलने का कोई मार्ग था, तो उन्होंने उस पर भी विचार किया। निश्चय ही उन्होंने स्वीकार किया कि उस अंश में महान सत्य छिपा है। वे परमेश्वर को कैसे अधिक अच्छे से समझें और पहचानें, वे उसे प्रसन्न कैसे करें। मित्रों, परमेश्वर को प्रसन्न ना करने का परिणाम क्या होगा? ऐसे अनेक प्रश्न उनके सामने थे। इससे पूर्व कि डॉक्टर लूक इन प्रश्नों के उत्तर दें, हम पीलिया ए के अपने विषय पर चर्चा आरंभ रखें कि उससे बचाव कैसे करें और उसका उपचार कैसे करें। सर्वप्रथम हम उपचार पर विचार करें। यदि पीलिया ए उग्र रूप धारण कर ले तो उसका उपचार नहीं है। स्मरण करें कि उग्र पीलिया 4 से 6 सप्ताह तक रहता है, उसके बाद वह स्वयं ही शरीर त्याग देता है। मित्रों, आज संसार में उग्र पीलिया ए का उपचार नहीं है, चाहे अंग्रेजी दवाई में हो या पारंपरिक दवाइयों में हो। कुछ ही दिनों में वायरस को समाप्त करके रोग मुक्ति मिल जाए। यदि ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि सुभाष शीघ्र निरोग होकर काम पर लौट जाता। मित्रों, पीलिया ए का उपचार सहायक होता है, अर्थात दस्त, उल्टी तथा अन्य लक्षणों का उपचार करना। मित्रों, यह एक जरूरी योगदान है, क्योंकि पीलिया ए के रोगी बहुत बीमार हो जाते हैं और इन्हें स्वास्थ्य अच्छा नहीं लगता है। पीलिया ए के कई रोगियों को प्राय अस्पताल में नहीं रखा जाता है, परंतु उल्टी दस्त के कारण यदि शरीर का निर्जलीकरण हो जाए तो निश्चय ही अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता पड़ती है, परंतु ऐसा बहुत कम होता है। यदि किसी को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता भी पड़े तो उसे कुछ ही दिनों में छुट्टी दे दी जाती है। 1 सप्ताह से अधिक अस्पताल में रहने की आवश्यकता उन्हें नहीं पड़ती है। मित्रों, अब हम इसकी रोकथाम के विषय चर्चा करेंगे, क्योंकि इसकी रोकथाम संभव है। अब इसकी रोकथाम कैसे संभव है? हमने देखा कि पीलिया ए एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति को लगता है, एक रोगी से दूसरे को पानी या भोजन के द्वारा। अब पीलिया की रोकथाम कैसे करें? सबसे मुख्य बात तो यह है मित्रों कि सब जन मल मूत्र त्यागने के बाद हाथ सफाई से धोएं। पीलिया ए के बारे में इस बात का ध्यान रखना अधिक जरूरी है। यदि सब ऐसा ही करें तो पीलिया नहीं फैलेगा, चाहे वह पीलिया ए ही हो। मित्रों, साबुन से हाथ धोने पर पीलिया ए का वायरस मर जाता है, और खाना पकाने वाले या खाना परोसने वाले बर्तनों में स्पर्श द्वारा वायरस नहीं परोसेंगे। मित्रों, कुछ स्थानों में शिष्टाचार के आधार पर एक ही पात्र में खाना ज्यादा होता है। यह एक अति उत्तम सामाजिक प्रथा है, परंतु पीलिया का रोगी यदि सहभागी है तो अन्यों को संक्रमण हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि जी मचलना, उल्टी, दस्त आदि को किसी को भी नहीं थी। मित्रों, आवश्यक नहीं कि ऐसा हो। रोगी लक्षण प्रकट होने के 2 सप्ताह पूर्व ही वायरस त्यागना आरंभ कर देता है। मित्रों, कहने का अर्थ यह है कि लक्षण प्रकट के 2 सप्ताह पूर्व ही रोगी संक्रमण फैलाने लगता है, इसलिए सहभागिता का भोजन एक ही पात्र में करना उचित नहीं है। यह पीलिया ए फैलाने का एक सामान्य तरीका है। सच तो यह है कि विशेषज्ञों के मतानुसार 90% मनुष्य अपने जीवन काल में पीलिया ए के संक्रमण का सामना कर चुके हैं। मित्रों, अब आप पूछेंगे कि संक्रमण के सामने रहने के बाद क्या मुझे आगे चलकर कभी पीलिया ए हो सकता है? मित्रों, मैं आपको बता दूं, आपको पीलिया ए नहीं होगा। संक्रमण के कारण आपको आजीवन प्रतिरक्षा क्षमता प्राप्त होती है। मित्रों, मैं आपको बता दूं, इसका टीका भी आता है। 4 से 5 वर्ष से टीका उपलब्ध है, परंतु महंगा होने के कारण अधिक प्रचलन में नहीं है। पाश्चात्य देशों में तो इसका बहुत उपयोग किया जाता है। यह टीका साल में एक ही बार दिया जाता है और एक साल बाद उसका बूस्टर दिया जाता है, जिससे आजीवन की सुरक्षा प्राप्त होती है। टीका सुरक्षित और प्रभावी है। अधिकांश नगरों में यह टीकाकरण किया जाना चाहिए। इससे मनुष्य सदा के लिए पीलिया ए से सुरक्षित हो जाता है। मित्रों, अब हम पाप से उत्पन्न रोग पर विचार करेंगे। सुभाष और उसकी पत्नी सोच रहे थे कि परमेश्वर रहित निराश जीवन से उन्हें बचाने वाला कोई मार्ग हो। वे परमेश्वर को कैसे पहचाने? वे परमेश्वर को जानने और उससे प्रेम करने के लिए क्या करें? उसे जानने से उनके जीवन में क्या अंतर उत्पन्न होगा? उनके मन में ऐसे अनेक प्रश्न उठ रहे थे। उन्होंने अपने प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए रोमियो की पुस्तक पढ़ी। मित्रों, सुभाष और उसकी पत्नी ने रोमियो से यह अंश पढ़ा जिसमें परमेश्वर के बारे में उनके प्रश्नों के उत्तर थे। मित्रों, वह अंश रोमियो 3:21-26 में है, जहां पे इस प्रकार लिखा है, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मेत धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो गई जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। मित्रों, उन्होंने यह भी पढ़ा कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यह अंश हमें रोमियो उसके 6:23 में मिलता है। इन अद्भुत पदों ने उनके मनों के प्रश्नों के उत्तर दिए। परमेश्वर उन्हें अपनी उपस्थिति में उचित ठहराना चाहता था, परंतु वे अपने पापों के कारण ऐसा करने में सक्षम नहीं थे। वे विश्वास में प्रभु यीशु के निकट आ सकते थे कि वे पापों से उनको मुक्ति दिलाए। मित्रों, उन्होंने समझ लिया था कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु अनंत जीवन प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर का वरदान है, अनंत मृत्यु नहीं। मित्रों, मैं आपको बता दूं, सुभाष और उसकी पत्नी के लिए वरन उसके संपूर्ण परिवार के लिए शुभ संदेश था। एक दिन उन्होंने अनंत जीवन पाने के बारे में रेडियो पर सुना। प्रचारक कह रहा था, यदि तुम प्रभु यीशु का अपने मुंह से अंगीकार करो और मन में विश्वास रखो कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया तो उद्धार पाओगे। मित्रों, यह अंश हमें रोमियो उसके 10:9 में मिलता है। सुभाष और उसकी पत्नी दोनों ने विश्वास किया। उन्होंने स्वीकार किया कि प्रभु यीशु जगत का और उनके जीवन का प्रभु है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया प्रभु यीशु उनके पापों के लिए क्रूस पर मरा और इस प्रकार उन्हें नया जीवन प्राप्त हुआ। अब उन्हें परमेश्वर के साथ शांति प्राप्त थी। मित्रों, प्रभु आपको आशीष दे।
प्रिय श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको लाभ मिला होगा। यदि इस कार्यक्रम से संबंधित कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें, कार्यक्रम डॉक्टर लूका, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। आप हमसे फोन के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 0995882041।